बढ़िया रोल किया था इन्होंने धृतराष्ट्र के महाभारत, अभी भी एपिक चैनल पे आ रहा है महाभारत सीरियल शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक।
मल्होत्रा जी से
आज का प्रसंग जो है वो इस प्रकार रहेगा, श्री राम द्वारा लंका जी का किया प्रस्थान एवं समुद्र तट पर प्रवास, विभीषण रावण संवाद, अपमानित होकर विभीषण का श्री राम की शरण में आना, श्री राम विभीषण मिलन, समुद्र से रास्ता मांगना। राम सेतु का निर्माण, अंगद रावण संवाद, लंका पर श्री राम सेना की चढ़ाई, मेघनाद लक्ष्मण युद्ध, कुंभकर्ण का परिचय, श्री राम कुंभकर्ण युद्ध, श्री राम रावण भयानक युद्ध, रावण मरण, विभीषण एवं मंदोदरी का विलाप, रावण का दाह संस्कार, सीता की अग्नि परीक्षा। इसके अलावा कल जो है कथा को विराम दिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि इतनी अच्छी जो कथा, इतनी मधुर कथा जो प्रभु जी ने इतने जो ज्ञानवर्धक कथा हमारे को सुनाई, साथ में सुनाई, उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए हम कुछ भी भेंट देना चाहें प्रभु जी को दे सकते हैं। आपको बुला के प्रभु जी से आशीर्वाद लेके, उनसे प्रसाद लेके, उनको जो भी भेंट देना चाहें आप दे सकते हैं। अभी आरती होगी, उसके बाद प्रभु जी से अनुरोध है कि आज की कथा का शुभारंभ करें। हरे कृष्ण।
शुरू कर आरती, शुरू कर आवाज। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम,
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम,
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम,
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम,
नव
कांजलोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणम,
दर्प अंगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम,
दर्प अंगणित अमित छवि नवनील सुंदर,
पट पीत मान परित रुचि सुचि नाम जनक सुतावरम,
पट पीत मान परित रुचि सुचि नाम जनक सुतावरम,
भज दीन बंधु दिनेश दानव रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन,
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन,
शिव मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण,
शिव मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, शरण
आजानु भुज शरचा पधर संग्राम पीत कर दूषण
आजानु भुज शरचा पधर संग्राम पीत कर दूषण
इति वदति तुलसी शंकर शेष मुनि मनरंजनम
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
मम हृदय कंद निवास कर कामादि कल दल गंजनम
मम हृदय कंज निवास कुरुतामादि कल दल गंजनम
मन जाहि राचम मिलहि शोभ सहज सुंदर सावर
मन जाहि राचम मिलहि शोभ सहज सुंदर सावर
करुणा निधान सुजानशील सने जान तरावर
करुणा निधान सुजानशील सने जान तरावर
एहि भांति गौर आशीष सुनसि सहित हर सिंह
बांदि गौरी आशीष सुनिसिया सहित हर सिंह अली
तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चल
तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली
राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
जय रघुनंदन जय सिया 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 राम
जानकी वल्लभ 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 जय सिया राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय 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 राम
श्री राम जय राम 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 जय जय राम
जय रघुनंदन जय सिया 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 राम
जानकी वल्लभ तुम्हे प्रणाम
जानकी वल्लभ तुम्हे प्रणाम
जानकी वल्लभ तुम्हे प्रणाम
राम की बालावत में प्रणाम
ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय जय राम
राम जय रघुनंदन जय सियाराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान
सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद
श्री रामचंद्र भगवान की
जय
हनुमान जी की
जय
जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की
जय
रामनवमी महामहोत्सव की
जय
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः
हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह से हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके वापस आते हैं और उसके बाद वो संदेश लेकर के अंगद जामुन के साथ अपने बानर मित्रों के साथ भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान श्री राम से पूरा संदेश बताते हैं और उसके बाद अब भगवान राम और हनुमान जी सब भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी आपने जो कार्य किया उसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता जबकि सब कुछ के मालिक कौन है? भगवान ही है। देखिए भगवान कितने महान हैं। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि तीन प्रकार के सेवक होते हैं। उत्तम सेवक वह होता है कि जो उसको कार्य दिया जाता है उससे ज्यादा ही करके आता है। है। तीसरे है हनुमान जी, आप उत्तम सेवक हैं, क्योंकि आपने जो कार्य किया, हमने तो आपको भेजा था सिर्फ सीता जी का पता लगाने के लिए, लेकिन आपने तो बहुत कुछ पता लगा करके आए हैं। हनुमान जी, आपने तो लंका भी जला करके आए है ना, और पहले से ही जितने भी अस्त्र शस्त्र थे रावण के स्टोर में रखे हुए थे खजाने में, उसको भी तहस नहस कर दिया। कि हनुमान जी ने बात बताई थी कि जो वहाँ पे पुल बनाए गए उनको हम पहले से तहस नहस कर दिया है, काफी कुछ काम तो आप करके आए। ये उत्तम सेवक की पहचान है, इसीलिए हनुमान जी का नाम दास श्रोमण कहा जाता है। कि अगर दास ही बनना है तो किसकी तरह बनो, हनुमान जी की तरफ। आज हम लोग क्या करते हैं, नाम कागे दास तो लगा देते हैं लेकिन सोच बास की बनी रहती है ना। सोच कैसी बनी रहती, बास भाई। जब दास लिखते हो है ना, तो दास्ता करके दिखाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश यही है, संदेश शिक्षा यही है कि जो शुद्ध भक्त होता है, परम वैष्णव होता है, वो अपने आप को तिनके से भी नीचा क्या करता है, समझता है। तो जो भक्ति में भक्त लगे हुए हैं है ना, उनको परखना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही पवित्रता ही है ना, ये हमारी क्या है, कसौटी है, कि इस कसौटी में हम कितने खरे उतर रहे हैं। सीनियर बनने से कुछ नहीं होता है, आप भक्ति में सिंसियर कितना है वो महत्व रखता है। लेकिन अज्ञानता बस ये चीज समझ नहीं, तो वही भगवान राम कहते हैं कि जो उत्तम सेवक वही है जिसको जो भी कार्य दिया जाता है उसे अधिक करके आता है। अब मध्यम के बारे में बताया है कि मध्यम सेवक वह है जो अधिक कार्य कर पाने की योग्यता होने पर भी उतना ही करता है जितना उसे काम दिया जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं, इन्हें मध्यम सेवक कहा गया है, वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो मध्यम की ये पहचान है, और जो निम्न थर्ड क्लास का सेवक होता है उसके बारे में बताया गया है कि निम्न कोड का सेवक नराधम होता है, वह योग्यता होने पर भी स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो बहस करेगा लेकिन काम नहीं करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो तीन प्रकार के सेवक का लक्षण भगवान ने बताया भगवान राम ने। अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम निम्न स्तर पे हैं तो अपने स्तर को क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए है ना, क्योंकि ऊपर बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है ना। यदि आप पीछे हैं तो अपने कार्यों के द्वारा, स्वभाव के कारण, विनम्रता के कारण, सरलता के कारण आगे बढ़ सकते हैं है ना। तो भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और इन तीन श्रेणी में से किस श्रेणी में है। अगर आप निम्न श्रेणी में आते हैं तो आपको पहले मध्यम श्रेणी तक पहुंचना चाहिए। अब मध्यम श्रेणी तक जब पहुंच गए फिर प्रयास करना चाहिए कि हमें उत्तम श्रेणी के में आए। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर आप बड़ा सोचोगे तो कुछ कर पाओगे, अब कुछ सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप उत्तम सेवक बनने का प्रयास करोगे तो कम से कम मध्यम तो बन ही जाओगे। तो हमें बनना ही बनना है। जैसे हम उत्तम खाना चाहते हैं, उत्तम पढ़ना चाहते हैं, ये सब उत्तम चाहते हैं, लेकिन व्यवहार भी उत्तम होना चाहिए, क्योंकि भक्त की पहचान उसके व्यवहार से होते हैं, उसके आचरण से होता है। प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए पूरे विश्व में जा करके, किस तरह से प्रचार किया, आप विदेश जाए तब पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ऐसे देश में जा करके अकृष्ट भावना भावित को फैला दिया, जहां की हर चीज, वहां का रहन सहन, टेक्नोलॉजी, पैसा, विचार बहुत आगे है। और ऐसी जगहों पे भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रचार करके वहां के लोगों को भक्त बना दिया, भक्ति को बढ़ा दिया। कैसे, अपने आचरण के बल पर। हमारे सामने जो आज गेस्ट आए हैं, श्रीमान गिरिराज शंकर जी, जिन्हों की महाभारत जैसे पवित्र सीरियल पर धृतराष्ट्र का रोल किया, अब ये अमेरिका में रह रहे हैं, लॉस एंजलिस में, बिल्कुल मंदिर के पास ही लिया हुआ। हमको यही बोल रहे थे कि देखिए, अब चर्चा होती कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया। अभी इनके बेटे का जन्मदिन आने वाला है, है ना, और अभी से प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस्कान के ही मंदिर में मनाएं। एक कितनी अच्छी सोच, राइट, एक किसका चमत्कार है, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने यही किया कि आप जहां भी हैं वहीं कृष्ण का मंदिर, अमेरिका में है तो अमेरिका में प्रभुपाद जी इस्कान का मंदिर बना दिया, लंदन में वहां बना दिया, कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर शहर में हर जगह भगवान का मंदिर होना चाहिए, और जहाँ कृष्ण का मंदिर है वहीं वृंदावन है, वहीं धाम है। क्योंकि सब कुछ भगवान के चरणों में है, तो चरण की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य उसी को मिलता है जो उत्तम सेवक होता है। और हनुमान जी आज प्रभु की सेवा करके आपके सामने हैं, यहां बैठे हुए हैं, अमर हैं, इतने प्रिय हैं कि हमेशा राम दरबार में सीता, राम, लक्ष्मण, और जबकि भगवान के दो सगे भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, राम दरबार में नहीं है, लेकिन हनुमान जी अपनी सेवा के बल पर है ना, उनके साथ दरबार में हमेशा हाजिर होते हैं। ये है सेवा का फल, आप भी सेवा करके देखिए, तो सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करे। सेवा करने की इच्छा नहीं रहती है क्योंकि हम अपने आप को बास समझते हैं, कोई श्रेष्ठ अगर है तो उसकी सेवा करने में, आसन देने में, हरे कृष्णा बोलने में क्या जाता है, आप खुद सोचिए, यही सेवा है। आगे बढ़ने, भगवान के करीब जाने का यही रास्ता है कि आप कितना निश्चल हृदय के हैं, कि छली कपटी भगवान को पसंद नहीं है, अहंकारी को भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। रावण की दुर्दशा ऐसी क्यों हो रही है, सिर्फ अहंकार के चलते। विद्वान होने से कोई फायदा नहीं है, आप विद्वान हैं लेकिन आपके हृदय में भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, आप विनम्र नहीं हैं, सेवक की भावना नहीं है, उत्तम सेवक नहीं है, तो क्या फायदा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उत्तम सेवक वही होता है जिसको जो सेवा दी जाती है उसे अधिक करके आता है। हनुमान जी उत्तम सेवक। इस तरह से हनुमान जी से बात कर रहे हैं भगवान। हनुमान जी की ये राय थी कि हे राम, यदि आप आदेश दें तो मैं अंगद, नल, नील, द्वित, जामंत कुछ खास खास लोग जा करके और सीता जी को ला सकते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं स्वयं रावण का वध करके अब सीता जी को वापस लाऊंगा। तो ये सब विचार विमर्श कर रहे थे भगवान अपने हनुमान जी के साथ। और तब हनुमान जी क्या करते हैं, जब इस तरह से विचार विमर्श कर रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें अब आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब जितने भी बानर हैं बहुत बड़ी सेना में है ना, उस दिन मैंने आपको सुनाया था कितने करोड़ अरब 10 खरब बानर अलग अलग पहाड़ से आए थे है ना, और सब जो है इतने उतावले थे है ना लड़ने के लिए, क्योंकि अब सीता जी का पता चल गया है। तो जो छोटे छोटे बानर थे वो भी गुस्सा कर रहे थे कि जैसे ही सुग्रीव खड़े होकर के आदेश दिया कि अब हम लोगों को लंका की ओर क्या करना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए, तो जितने बानर थे बड़े विशाल सब के सब चलने लगे। तो इतना सुंदर बताया गया है कि जब शिव बानरी सेना चली तो दृश्य कैसा था उसको आप लोग सुनिए। बहुत सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने कि चिक्का रही दी गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हर्ष सम गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावई सही शक्न भार उधार अहिपति बार बार ही मोहई गह दशन पुनि पुनि कमठ पिष्ट कठोर सो किमि सोहई रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्पराज शो लिखत अभिचल पावनी। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी जब बानर भालू प्रस्थान करे वहां पे, तो सब के सब जो है पूरा जितने देवता थे गंधर्व किन्नर विद्याधर ये सब के सब आकाश मार्ग पे प्रकट हो करके पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं को बड़ी जल्दी थी इसलिए कि रावण ने अगर परेशान किया था देवताओं को ही परेशान किया था और अच्छी तरह से परेशान किया था, इसीलिए अब देवता लोग बड़े ही परम प्रसन्न हो करके और करें कि अब रावण का अंत आने वाला है। इसीलिए जब क्रोध करके सब जा रहे हैं तो अब इधर भगवान जो है अपनी बानरी सेना के साथ समुद्र तट के पास पहुंच जाते हैं। बड़े ध्यान से नहीं, बड़ा आनंद आए जब समुद्र तट के पास पहुंच गए। तो भगवान ने कहा कि सब लोग अपना अपना स्थान शिविर लगा करके यहाँ पर बैठे हैं। अब इधर भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, अब लंका पे, लंका चलते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो दो दृश्य आपको दिखाई देगा, एक भगवान राम मानो किसी ना, अब आप कहाँ पहुँच रहे, लंका। जब से हनुमान जी ने लंका को जला करके आए हैं, घर घर में एक ही की चर्चा होती कि बानर कितना बहादुर था, हमारा घर फूंक के चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पूरे लंका में घर घर में हनुमान जी प्रतिष्ठित हो गए, सब उनकी चर्चा कर रहे, दिन रात सोते जागते हनुमान जी नजर आते थे। हाँ, रावण ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में उसने विचार विमर्श किया। उसने कहा भी कि उत्तम कोट के बुद्धिमान व्यक्ति जो कार्य करने से पहले समारुचि वाले हैं, वो अपने मित्रों से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। इसलिए हे प्रहस्त इंद्रजीत विभीषण जितने मुख्य मुख्य लोग थे, उन सब के साथ वो मीटिंग कर रहा था। और उसको जब पता चला कि भगवान राम जो हैं बानी सेना के साथ समुद्र के तट तक आ गए हैं, तो उसने अपने बल पुरुष का बखान करना शुरू किया। तो कुछ जो चापलूस टाइप के राक्षस होते हैं ना, वो खड़े हुए कहे कि हमें तो इसकी चिंता करना ही नहीं चाहिए। एक कौन बोलता है, प्रहस्त बोलता है कि हमें तो देवताओं गंधर्व विद्याभरों, जब इनको कुछ नहीं समझा तो ये साधारण मनुष्य तो हमारे क्या हैं, आहार हैं, हम लोग तो इनको रोज खाते पीते रहते हैं, इस तरह हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे दुर्मुख नाम का जो राक्षस था वो भी खड़ा हो गया, कहे कि आप चिंता मत करिए, हम अकेले ही काफी हैं, है ना, सिर्फ आदेश हो जाए तो हम खुद मार दें। ऐसे जितने भी भयानक भयानक राक्षस थे उसकी कमेटी में, कमेटी समझ सकते, सब बैठे हुए, सब अपना अपना कर रहे हैं। एक राक्षस ने बोला, है ना, कि देखिए बानर भालुओं को तो हमारे जो राक्षस हैं ऐसे खा जाएंगे, है ना, इनको प्रतिदिन का आहार है, इससे हम सबको डर जाते हैं। एक जो राक्षस था वो खड़ा हुआ, कहे कि जब एक बानर आया था तब नहीं पकड़ के खा लिया था, तब तुम कहाँ थे। बहुत सही बात बोले उसने, सच के लिए सच, कि जब एक बानर आया था तब आपको भूख नहीं लगी थी, कहीं पकड़ के खा लिया। डिंग मारता है, इतने राक्षसों का वध कर दिया, रावण के पुत्र का वध कर दिया, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका जला दी, तब पकड़ के नहीं खा लिया, अब जो कहते हम पकड़ के खा लेंगे, चुप बैठ जा तू कुछ लेकर। बात सच है, कहना अलग बात है। ऐसा चापलूस लोग होते, कुछ लोग हाँ में हाँ जी वाले थे, सच्ची बात कोई कहने जाए बस वही बात बोलेंगे जो रावण को पसंद है। तब भीषण जो है वो समझाते हैं कि मेरे भाई अगर आप प्रेम के साथ विनम्रता से माता जानकी को प्रभु के चरण में पुनः वापस कर देंगे, है ना, तो आपका भी कल्याण होगा, अब पूरा हमारे राक्षस वंश का जो विनाश होना दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ये सब आपके हाथ में, क्योंकि भगवान राम स्वयं भगवान है और सीता जी उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का स्थान कहाँ होता है, नारायण के चरणों में। क्योंकि जब से आपने सीता को लाया है तब से कोई न कोई उपद्रव हो ही रहा है। इससे मेरे भाई मेरी बात मानो और सीता जी को वापस लौटा दो। रावण गुस्सा कर गया है ना कि मैं रावण दो तपस्याओं से हम डरेंगे, सीता को हम किसी भी हालत में वापस नहीं करेंगे। वास्तव में विभीषण की जो माता कैकसी थी वो समझाती थी, कैकसी बोलती थी कि बेटा देखो एक रावण है उसको सिर्फ तुम ही समझा सकते हो, क्योंकि जो हमारा दूसरा बेटा है कुंभकर्ण वो तो सोता ही रहता है, लेकिन एक तुम हो जो रावण को क्या कर सके समझा सकते हो, अब विनाश से बचा सकते हो, इसलिए बेटा तुम उसको समझाते रहो। तो अपनी माता की वजह से विभीषण जी हमेशा प्रयास ही करते रहे रावण समझाते। रावण था समझने का नाम ही नहीं था, उसने बोला कि विभीषण देखो तुम मेरे भाई हो, अब मेरे दिया ही खाते हो, यहां पर आ रहे हो, अब मेरे दुश्मन को तुम बड़ाई कर रहे हो। उसी समय उसका जो बेटा था मेघनाथ कि चाचा आप हमेशा जो है यही बात बोलते हैं, कि चाचा आप कायर हैं नपुंसक हैं, आप हमेशा जो है उनकी बड़ाई करते हैं, खाते हमारा है और गुणगान उनका करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। विभीषण भगवान के भक्त है, वो हर चीज समझ रहे थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी मुलाकात किससे हुई थी, हनुमान जी से। हनुमान जी से मुलाकात होने का था। इसी समय रावण को इतना गुस्सा है, जब विभीषण बार बार ये कहे वो सब कुछ सुन सकता था, लेकिन ये नहीं सुन सकता था कि कोई ये कहे कि सीता जी को वापस कर दो। अब विभीषण यही कह रहे थे बार बार कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए तो सारा समस्या का हल हो जाएगा, आप भी सुरक्षित रहोगे और पूरा राक्षस समाज सुरक्षित रहेगा। तो रावण भी बोला कि विभीषण तुम्हें लाज नहीं आती है ना, तुम बार बार हमारे जो शत्रु है उसी की बात करते हो, इसलिए तुम उसी के पास चले जाओ। और उठ करके जोर से एक लात मारा है। किसको, विभीषण को। देखो विभीषण भगवान के भक्त थे है ना, हनुमान जब मिले थे तो पूरा भगवान राम की भक्ति चर्चा हुई थी, लेकिन विभीषण भक्त होकर के भी भगवान की शरण में गए नहीं, क्योंकि जब तक जीव पूरी तरह से माया का लात नहीं खाता वो परम ब्रह्म की शरण में आता नहीं है, इसे शिक्षा लेना चाहिए। अब माया रूपी रावण जो था जब एक लात मारा विभीषण को, तब उनका दिमाग खुला है ने और कहा कि अब हम अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। अब अपना पूरा परिवार था, पुत्री पुत्र और अपनी पत्नी शर्मा, इतना बढ़िया महल उनका, सब छोड़ करके आकाश मार्ग से अपने तीन मंत्री अनल, संपत्ति और पनस, जो उनके प्रमुख सलाहकार थे, इन तीनों को लेकर के आकाश मार्ग से प्रभु राम से मिलने के लिए आए। इधर भगवान विचार विमर्श कर रहे हैं अपने सेना के साथ, मुख्य सलाहकार सुग्रीव, जामंत, हनुमान जी, नल, नील, द्वित, प्रमुख तार नाम जो बृहस्पति के बेटे थे, तार सबसे बात कर रहे थे। उसी समय इन बाणों की नजर ऊपर आकाश की गई, क्योंकि सारे बाणों बड़े चौकन्ने रहते थे कि कहीं से कोई अटैक न कर दे, तो उनकी नजर वहां पे पड़े। सुग्रीव ने भी देखा, तो कहे तो विभीषण ने बताया, विभीषण ऊपर था और नीचे देखा, तो विभीषण वहीं से आकाश मार्ग पे ही खड़ा हो गया, प्रणाम किया दूर से। और सुग्रीव और जो बानर थे, विभीषण ने कहा कि मैं रावण का भाई विभीषण, हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। लेकिन सुग्रीव ने रोका, ठहरो ठहरो, सब राय करने लगे कि भाई रावण का ही भाई है, राक्षसों पर कभी विश्वास किया ना जा सकता, क्योंकि ये बड़े धोखेबाज होते हैं, राक्षसी वृत्ति होती है, है ना, तो कहीं हमारा निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है, है ना, और ऐसे शत्रु के भाई को हम कैसे अपने दल में रख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं लाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा लाना चाहिए, है ना। अंत में अंगद से पूछा, कहीं पर उस पर कड़ी नजर रखो, है ना, एक आदमी ड्यूटी लगा दो, कड़ी नजर रखे उसकी हरकतें कैसी हैं, उससे पता चल जाएगा। तो सब हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी को ज्यादा पता था। हनुमान जी कहा कि वो भगवान के परम भक्त हैं, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, उनका बहुत ही सुंदर स्वभाव है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत करेंगे, है ना, तो उनको जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभु राम भी कहे, भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरी शरण में आए हनुमान, कि यदि सिर्फ इतना कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सर स्वीकार कर लेता हूँ। अगर रावण का भाई विभीषण हमारी शरण में आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जब भगवान ने कह दिया तब इशारा किया सुग्रीव ने, तब के लैंड नीचे जमीन पे उतरे, है ना, कौन, विभीषण जी, और उतर करके सीधा भगवान के चरणों में गिरे, है ना। और रावण ने क्या किया था, अपना एक जासूस भेजा था शुक और शरण कि देखो वहां पे क्या हो रहा है, ये राजा महाराजा जो है अपना जासूस रखते हैं खबर लेने के लिए, है ना, कि दुश्मन क्या प्लान बना रहा है पता लगाने के लिए। तो शुक और शरण, तो उनको बाणों ने विभीषण पहचान गए, वो सबको पहचानते थे, है कि तो शुक है, वो पक्षी के रूप में आया था, तो बाणों उसको पकड़ लिया, खम्बारा पीटा शुक को, और राम की दुहाई, राम की कसम खाने लगा, इसलिए छोड़ दिया, है ना, फिर वो वापस चला गया। विभीषण को भगवान ने कहा कि ये लंकेश आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं, है ना। जब लंकेश शब्द बोला, है ना, तो सब चौकन्ने रह गए, क्योंकि अभी तो रावण, लंका का राजा रावण है, भगवान इतने दयालु हैं कि उसको लंकेश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं, रावण का भविष्य किस पर टिका हुआ है, भगवान राम पर, जब तक उनकी कृपा है तभी तक, भगवान को पता है कि क्या होने वाला है, इससे पहले ही उसका कि इस लंका का राजा आपको बनाते हैं। तुरंत जल मंगाया गया है ने, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव सब ने जल दे करके और उसको लंका का राजा घोषित। सिर्फ भगवान जो लंकेशी बुलाते थे। विभीषण बहुत खुश और प्रसन्न हुआ। भगवान राम विभीषण से कहे कि अब हम लोग यहां तो आ गए हैं, लेकिन ये जो विशाल समुद्र है ना, इसका कैसे पार किया जाए। विभीषण सब जानते थे, इसीलिए भगवान राम ने उनसे मित्रता की कि ये रावण का सगा भाई है और जितनी भी लंका की कमजोरी है, बरजोरी है, सब इसको पता है ना। तो जहां पेच फंसेगा, गाड़ी फंसेगी, वहां गांड कौन खोलेगा? विभीषण। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा करती हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेती है कि नहीं, ये भी राजनीति की एक कड़ी है। तो भगवान राम सब समझते थे। कहते ना, घर का भेदी लंका ढा। तो लंका ढाने में विभीषण का बहुत हाथ था है ना। विभीषण ने कहा कि हे राम, ये जो सागर है ना, वो तो आपका पूर्वज ही है, महाराज सागर से कि 60,000 पुत्रों ने इसका निर्माण किया था ना। तो अगर आप, चूंकि आपका पूर्वज ही है ना, स्वयं आप उसी के वंश, महाराज सागर के ही वंश से आते हैं, तो अगर सागर से प्रार्थना करेंगे तो वो रास्ता दे सकता है। ये बात भगवान राम को बहुत अच्छी लगी। तो सुग्रीव से कहा, तो सुग्रीव भी विभीषण की सहमति में थे ना। तो विभीषण, राम और सुग्रीव, ये तीनों की एक राय बनी कि 3 दिन तक समुद्र के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं, अगर ये रास्ता दे देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लक्ष्मण जी, उनको ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा, भैया जब अपने पास अग्निबाण रखा हुआ है नहीं, तो ये 3 दिन हम क्यों खर्च करें, बेकार करें? एक बाण निकालिए और पूरा मरुस्थल बना करके सब पैदल निकल जाएंगे। भगवान राम ने बहुत अच्छी बात कही कि हे लक्ष्मण, ऐसा ही होगा, लेकिन 3 दिन प्रार्थना करने में क्या, जब इतना दिन बीत गया तो 3 दिन और सही, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए भगवान किस तरह से अयोध्या से पैदल चल करके और समुद्र के किनारे तक पहुंच गए हैं, इसके बीच में उन्होंने कितने लोगों का वध किया, राक्षसों का, बाली का वध किया, लेकिन किसी को अपशब्द नहीं कहे। ये भगवान की महानता है, गाली गलौज कुछ नहीं। हम लोग की क्या स्थिति है कि थोड़ी सी बात होती है, दे दनादन गालियां, मारपीट शुरू हो जाता है ना। भगवान बड़े मर्यादित ढंग से काम करते हैं। तो यहां भी भगवान मर्यादा उपस्थित कर रहे। तो 3 ही दिन क्यों भगवान ने चुना? इसलिए कि एक दिन विभीषण की राय के लिए, कि विभीषण का भी ही राय था, एक दिन उनकी तरफ से सुग्रीव जो प्रमुख सेनापति थे उनके लिए एक दिन, और तीसरा अपने के लिए, क्योंकि उनकी भी यही राय थी। तब भगवान राम, सुग्रीव और भीष्म तीनों की आम सहमति थी, ये तीन ही थे, इसलिए तीन दिन का ही समय रखा गया। अब भगवान राम बैठ गए, समुद्र अपने लहर पे लहर चल रहा है। आप लोगों ने समुद्र देखा होगा, एक लहर जाती है और जब ठंडी होती तो उसे पीछे से लहर आ जाती है ना, इस तरह से समुद्र अपने हिसाब में था। एक दिन प्रार्थना करते करते बीत गया, लेकिन जो सागर है, समुद्र है, कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरा दिन बीत गया है, समुद्र प्रकट नहीं हुआ। फिर जब तीसरा दिन गए, तीन दिन बीत, जब तीसरा दिन बीत गया और चौथा दिन आया, तब भगवान ने क्या कहा कि लक्ष्मण अब तुम्हारी राय चलेगी। भगवान ने बोला था लोग कि ऐसा ही होगा है ना। तो देखो भगवान कितने त्रिकालदर्शी हैं, सबका मन रखने वाले है ना। विभीषण की भी बात मान ली, सुग्रीव की भी बात मान ली, अपनी भी एक दिल की बात मान ली। जब तीनों दिन बीत गए और सागर उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर जो उनकी सहमति थी, उनकी जो राय थी, तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण अब तुम्हारी राय से काम होगा लगता है। अब यही ठहरते हैं और ये देखते हैं कि समुद्र क्यों नहीं प्रकट हो रहा था है ना, समुद्र क्यों नहीं प्रकट हो रहा था, उसका एक रहस्य था। वास्तव में समुद्र जान बूझ करके नहीं प्रकट हो रहा था, वो ये चाह रहा था कि भगवान राम क्रोध करें, क्योंकि इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था। वो भी एक बड़े मुसीबत में फंसा हुआ था, कौन, सागर। अब वो मुसीबत एक ही व्यक्ति टाल सकता था, स्वयं राम, ये बात वो जानता था। इसीलिए राम जब प्रार्थना करते थे शांति से, जब तक भगवान शांति से प्रार्थना कर रहे थे, वो नहीं सुना, क्योंकि वो चाहता था कि भगवान क्रोध करें और धनुष पर बाण चढ़ाएं, तभी मैं प्रकट होऊंगा, ये उसने ठान लिया था। और यही हुआ है ना, जैसे ही भगवान लक्ष्मण की बात मान करके लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण से ही लगा, लक्ष्मण जी तो तैयार ही थे इस काम के लिए है ना। जैसे भगवान ने कहा लक्ष्मण आप धनुष बाण लेके आओ, तुरंत लक्ष्मण दौड़ के ला दी और अपने भाई राम को पकड़ा दिए। अब भगवान राम ने इतना क्रोध किया है ना, समुद्र यही चाहता था है ना, धनुष बाण को जो है खींचना शुरू किया। भगवान उस समय जब बाण खींच रहे थे है ना क्रोध करके, उस समय क्या शब्द बोलते हैं आई जीटीज में सुनाना चाहता हूं। कहते हैं कि मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूं कि इस भौतिक जगत में दुराचारी व्यक्तियों की समक्ष धैर्य, क्षमाशीलता एवं नम्रता जैसे गुण का कोई उपयोग नहीं। आप लोग अपने जीवन में ये बात देख रहे हैं है ना, कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं है ना, उनके सामने विनयशील, विनम्रता, ये सब क्या होता है, तो चुटके वो महत्व नहीं देता। वो भगवान राम कर रहे हैं, फिर कह रहे कि इस भौतिक विश्व में अधम व्यक्ति उनका अधिक सम्मान करते हैं जो निर्लज्ज क्रोधी कड़ वचन बोलने वाले तथा स्वप्रचार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग तो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास में, है ना, जो घमंडी हैं, अहंकारी हैं, दुष्ट हैं, लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं। ये सच है कि नहीं सच है? भगवान राम कहते कि कैसा एक कल माने ऐसा स्थिति हो गई है कि अगर आप विनम्र हैं तो कोई आपको महत्व नहीं देता है, और जो टेढ़ा आदमी है, दुष्ट है, बदमाश है, कपटी है, है ना, घमंडी है, अहंकारी है, बोलने का तमीज नहीं, ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं लोग? सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि डरते हैं कि किसकी कब बेइज्जती कर देगा। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जो व्यक्ति टेढ़ा होता है उसको कोई टच नहीं करता। चाणक्य पंडित बात कहते हैं कि जो वृक्ष टेढ़े होते हैं उसको कोई काटता नहीं है, जो सीधा वृक्ष होता है उसको सब काटते हैं। इसीलिए ज्यादा सीधाई भी अच्छी नहीं होती। जैसे एक साधु थे, एक सांप था, उस सबको काटता रहता था, सब लोग उसके पास कंप्लेन करके गए। तो साधु ने उसको बोला कि देखो भाई, तुम ऐसा करो, आज से काटना बंद कर दो, है ना। तो कहे ठीक है। अब जब सांप ने काटना बंद कर दिया तो छोटे छोटे बच्चे भी उसको मार रहे हैं लाठी डंडा से। जब वो काटता था तो बड़े बड़े पलवार उसको देखकर डर के भागते थे, और जब बेचारा सीधा हो गया, शरीफ हो गया, विनम्रता ओढ़ ली, तो सब उसको बच्चे भी आकर उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और बेचारा एकदम लथपथ कमजोर होकर टूट होकर के किसी तरह से घसीट करके साधु से कहा कि आपने कैसा हमको राय दे दिया, है ना, कि अब हमको अब हम ही मार खा रहे हैं, है ना। तो साधु ने उसको बताया कि देखो भाई, मैंने तो काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकारने के थोड़ी मना किया था। फुफकार तो सकते हो, इसीलिए सांप काटता कम है, फुफकारता ज्यादा है। अब फुफकारने से आदमी डर जाता है, तो कहीं सीधा रहो, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, तभी इस संसार में जी सकोगे। इस संसार है ही ऐसा, भगवान राम कर कि देखो, मैं बड़ी विनम्रता से 3 दिन तक इस दुष्ट सागर से मैं रास्ता मांग रहा हूं, ये हमको निर्बल कमजोर समझ रहा है, है ना, इसलिए अब इसको मैं दंड देता हूं, है ना। अब कहे कि लक्ष्मण लाओ बाण धनुष, लक्ष्मण तो तैयारी रहते थे इस सब काम के लिए, है ना, अतरन पकड़ा कि भैया ये लीजिए, अतरन सोखिए, है ना। जैसे भगवान ने खींचा बाण, ये बात कही, बताया गया है कि सिर्फ भगवान ने खींचा, अब पूरा ब्रह्मांड में जैसे भूकंप आ गया हो, है ना, इस तरह से उथल पुथल हो गया कि गंधर्व देवता सब हिल गए, सब परेशान, पृथ्वी डगमगाने लगी, और जो समुद्र था वो पानी जैसे ज्वार भरा जाता खोलने लगा, मछलियां जितने जलचर थे सब उछल उछल के ऊपर आने लगे कि उनका रहना हलचल पैदा होगी, एक प्रकार की अग्नि जो है प्रकट हो गई। बाण छोड़ा नहीं तब ऐसा हुआ। तो वो बाण जैसे ही भगवान राम ने निशाना साध कर रावण समुद्र की तरफ से करके तान दिया, इतने में क्या हुआ, समुद्र प्रकट हो गया, दोनों हाथ जोड़ करके अब ब्राह्मण के वेश में, है ना, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु अगर किसी की पूजा करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं, ब्राह्मण की, गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए समुद्र ब्राह्मण का वेश प्रकट करके और दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब भगवान ने क्या किया, तीर को छोड़ा नहीं, पर जितना पकड़े तो उतने पकड़े रहे, और खड़ा हो गया प्रकट होकर के। प्रार्थना करने लगा, खे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आपके प्रताप को तो हम अच्छी तरह समझते हैं, है ना, और आप को हम रास्ता देंगे, है ना। उन्हें बताया कि आपकी सेना में दो इंजीनियर हैं, नल और नील, है ना, जिसको पुल बनाने की कला थी, क्योंकि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जो सबसे बड़े शिल्पकार हैं देवताओं के, है ना। तो नल नील इन दोनों भाइयों को इकलाती है, तो आप सब बारह मिल करके हमारे ऊपर पुल बनाइए और हम पीछे से सहयोग करेंगे, रास्ता अपने आप बन जाएगा। भगवान राम ने कहा कि लेकिन समुद्र मेरी एक खासियत है कि जब मैं एक बार बाण चढ़ा लेता हूं तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा। अब बताओ तुम इसे मैं कहां छोड़ूं। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, उत्तर दिशा की ओर द्रुमकल आभीर, द्रुमकल एरिया में कुछ आभीर जाति के लोग हैं, हमें बहुत कष्ट देते हैं, देते ही रहते हैं, तो इस बाण की दिशा हमारी तरफ छोड़कर किधर मोड़ दीजिए, उत्तर दिशा की ओर, है ना, और उनका विनाश कर दीजिए ताकि हम भी प्रसन्नता से रहेंगे और आपके लिए रास्ता भी अच्छी तरह से देंगे। भगवान मुस्कुराए, तो भगवान समझ गए, इसीलिए प्रकट नहीं हो रहा था, ये चाहता था कि मैं गुस्सा करूं, बाहर चढ़ाऊं, और तभी, क्योंकि समुद्र यही चाहता था कि भगवान क्रोध करें, बाण चढ़ाएं, है ना, तो अपना भी कुछ काम हो, हले, तो भगवान समझ गए, हले, इस सब मुस्कुराते हुए भगवान ने क्या किया, बाण उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया और जाकर के द्रुमकुल जो जगह है वहां पे बाण आभीर जात के लोगों को समाप्त करके वापस आकर के फिर भगवान के तरकस में प्रवेश कर गया। इस तरह से जो है जो समुद्र था अब फिर प्रवेश कर गया। श्री राम जय राम जय जय राम, कीर्तन कर सब लोग,
श्री राम जय राम जय जय राम,
सब बोले
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
इस तरह से सागर प्रसन्न होकर के गया कि उसका जो लक्ष्य था पूरा हो गया है ना। अब भगवान ने कहा कि सुग्रीव अब पुल का निर्माण आरंभ किया जाए। तो जितने भी वानर थे सब बड़े बड़े पहाड़ पर्वत वृक्ष सब उखाड़ करके लाना शुरू करिए है ना, और फेंकने लगे शवन पे। नल और नील मिल करके उसको सेट करने में लगे। तो जो पहाड़ वो लोग उठा करके लाते थे वो तैरने लगते थे है ना। जब नल नील को सटा करके काम करना चाहते थे तो तैरते थे हट जाते सटते नहीं थे है ना। तो जामुन ने कहा कि जब तक राम नाम का मसाला नहीं सेट करेंगे कैसे चिपकेगा है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर रा लिखते थे और दूसरे में क्या लिखते थे म, और जैसे फेंकते थे राम ऐसे ऐसे सटता हुआ सब जो है जामुन किराए थी है ना। तो इस तरह से पुल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। तो जितने विशाल विशाल पर्वत हैं है ना, ये बहुत बड़ा काम था। समुद्र पुल बनाना सिर्फ भगवान ही कर सकते थे और करके दिखाया। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा लिखते हैं इस पर है ना। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस चीज को लिखते हैं कि देखो भगवान ने इतना बड़ा कार्य इसीलिए करे ताकि संसार के लोग जो नकली भगवान आते हैं प्रकट हो जाते हैं अपने आप को कहते हैं उनसे धोखा न खाएं। जो गीता भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म क्या होता है दिव्य होता है। हम जो भी कार्य करते हैं जिस युग में वो सब क्या होता है दिव्य होता है। तो इस त्रेता युग में भगवान राम रूप में आए और समुद्र पर पुल बना दिया है ना, कितना बड़ा कार्य है। आजकल जो तथाकथित लोग नहीं कर सकते हाँ। लेकिन कहने में क्या जाता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान का हर कार्य क्या होता है दिव्य होता है, और समुद्र में पुल बनाना एक बहुत बड़ा काम था हाँ। अब पुल का निर्माण पहले दिन का जो निर्माण हुआ, ये जो समुद्र है कितने योजन का है 100 योजन का। तो पहले दिन बेचारे सारे बानर भालू लंगूर सब मिल करके 14 योजन तक पुल बनाए। रात में इसका निर्माण कार्य बंद हो जाता था है ना। तो एक दिन में कितना योजन बनाए 14 योजन। अब दूसरा दिन फिर सुबह उठ करके अब एक ही काम था है ना, कि रात में रेस्ट करना और सुबह उठ करके पुल बनाना है। अब दूसरे दिन बेचारे जितने बानर भालू है मिल करके बड़े बड़े पहाड़ है ना, दूर दूर से चट्टाने पत्थर हर प्रकार का वो सब ला करके फेंक रहे हैं। नन नील मेन इंजीनियर है, बाकी आओ सब बानर मिल करके सब मिल करके पुल बना रहे हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने 20 योजन पुल बनाए। कितना 20 योजन, तो कितना हो गया 20 और 14 34 योजन है ना, 34 योजन तक पुल जो है पहुंच गया। जब तीसरा दिन आया है ना, फिर पुल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ सुबह होते ही। तो हनुमान जी बड़ा पहाड़ लेकर के आ रहे थे तो एक गिलहरी दिखी उनको, किसको हनुमान जी को। आप लोगों ने कितने लोग हैं जो गिलहरी देखा है सामने देखा है जिन्होंने नहीं देखा है हमारे मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वहाँ मंदिर में वहाँ गिलहरियाँ होती हैं है ना। फाउंटेन के पास जो वृक्ष है कदम का वृक्ष वहाँ पे गिलहरियाँ दिखती हैं। तो वो जो गिलहरी देखेंगे तो तीन रेखाएं होती हैं है ना, तो वो गिलहरी जो है उनको दिख गई। गिलहरी जानते क्या करती थी, वो जा करके पानी में प्रवेश कर जाती थी और अपना पूरे शरीर को भिगो लेती थी, है ना, और फिर बाहर आती थी तो समुद्र किनारे जो रेत बालू होता था उस पर लौट जाती थी। लौटना तो आप लोग जानते हैं, है ना, वो लौट जाती थी तो बालू की जो कण होते थे उसमें चिपक जाते थे, है ना, और फिर जा करके वो समुद्र के तट पर जाती थी और किनारे पे बालू झरा रहती थी, है ना, माने वो भी श्रम लगी थी, वो भी लगी हुई थी। तो जैसे ही हनुमान जी ने की नजर उस गिलहरी पर पड़ी, हनुमान जी ने बहुत डांटा उसका, कई खाम का तो हमारे पैर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी। बात सच भी है कि एक तो ऐसे मेरा इतना वजन, हाँ, और दूसरा इतना पहाड़, है ना, और अगर पांव के नीचे गलती से आ गई तो प्राण पखेरे उड़ जाएंगे, है ना, इसलिए तुम अपना चुपचाप किसी पेड़ पर चढ़ करके सिर्फ देखो, है ना, राइट, ये भीड़ भाड़ में मर जाएगी तो दब करके। फिर उन्होंने बोला, अब तुम्हारे बालू के कण डालने से थोड़ी पुल बनेगा। जब ये बात कही तो प्रभु श्री राम सुन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, इधर आए, फिर गिलहरी को बुलाया। अब कहा हनुमान जी इतना लंबा, अब बेचारी गिलहरी गिलहरी थी, तो भगवान राम ने क्या किया, अपना बायां हाथ ऐसे पृथ्वी पर टिका दिया, गिलहरी कट फुद के चढ़ गई। गिलहरियां चढ़ती बड़ी जल्दी है पेड़ ओड़ पे, है ना, आप गिलहरी पकड़ नहीं सकते आसानी से, बड़ी तेज भागती है, है ना, और चढ़ जाती है, तो ऐसे बाएं हाथ पे ऐसे चढ़ करके, कभी कभी आपने देखा होगा कि गिलहरी खड़ी भी होती है, है ना, अपना दो पंजा उठाकर ऐसे खड़ी होकर अच्छा कर्म कर ऐसे देखती है, राइट, आप देखा ध्यान से, अब जब कभी गिलहरी देखा तो देखिए रुक करके, देखना चाहिए कि ये सब भगवान की क्या है, रचना है, जैसे हम भगवान की रचना है तो गिलहरी भी एक भगवान क्या है, रचना है, ये सब भगवान की रचना है, तो भगवान की हर रचना को ध्यान से देखना चाहिए, इनकी एक्टिविटी हरकत कैसी करते हैं, तो जो है जैसे, तो वो ऐसे भगवान राम के इस यहाँ पे करके ऐसे भगवान के मुंह करके इसे खड़ी थी, है गिलहरी। अब सामने हनुमान जी खड़े हैं, गिलहरी भी खड़े, तो भगवान हनुमान जी की ओर मुंह करके बोलते हैं कि हनुमान जी आपको मैंने ज्यादा शक्ति दी है, इसलिए आप ज्यादा सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ ले रहे हैं, इस बेचारी को थोड़ी शक्ति दी है, लेकिन जितनी मैंने शक्ति दी है अपनी पूरी शक्ति से वो लगी हुई है, तो मेरी नजर में आपकी सेवा में गिलहरी की सेवा क्या है, समान होती है। कितनी बड़ी इच्छा शिक्षा भगवान देते हैं इस पे, कि भगवान सेवा से प्रभावित होते हैं, है ना, एक आदमी 1 करोड़ रुपए देता है क्योंकि उसको भगवान ने देने लायक बनाया है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी आता है ना, अगर वो अपने पोटली से 1 रुपए का सिक्का डालता है तो भगवान दोनों को बराबरी समझते हैं, इस जगह भगवान भाव से प्रभावित होते हैं, भावाग्रही जनार्दन, कि भगवान जो है आपकी भाव से प्राप्त की जो भगवान ने शक्ति दी है ना, उसके अनुसार अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो भक्तों को यह समझना चाहिए कि जिसकी जो सेवा है पूरी लगन से अपने शक्ति के अनुसार चलना चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई भक्त मंदिर में झाड़ू लगाता है, भगवान के भोग बनाने की सब्जी काटता है, जो बड़ा बड़ा डोनेशन लेके आता है, भगवान की नजर में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अहंकार नहीं करना चाहो, मैं तो लाखों रुपए लाता हूं इसमें अकड़ के रहूंगा, ऐसे नहीं चलता, ये नहीं, भगवान की नजर में आप विनम्रता से रहेंगे तभी भगवान के प्रिय बनेंगे, नहीं तो इस संसार में अकड़ के रह चले जाए, अकड़ के चले जाएंगे, भगवान के घर नहीं जा पाएंगे। है ना, कि भगवान को विनम्रता पसंद है, अकड़ता पसंद नहीं है, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, विनम्रता और भाव। आपका भाव कैसा है? आप जिस भाव से सेवा करेंगे भगवान उससे से। तो गिलहरी के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जो भी शक्ति है पूरी शक्ति से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। क्या भगवान का तो पता है, तो भगवान इस भावना से प्रभावित होते हैं। तो तीसरे दिन बताया गया है कि 21 योजन तक पुल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कितने दिन हो गए? 3 दिन। फिर चौथा दिन जब आया तो 22 योजन का निर्माण हुआ। अब पांचवें दिन बताया गया 23 योजन, अगर इसको मिला देंगे तो पूरा कितना हो जाता है, 100 योजन। तो एक पुल का जो निर्माण हुआ 5 दिन लगा इसमें पुल का निर्माण करने में। अब 5 दिन में इस सारे बानर भालू पुल बना करके, जब पुल बनकर तैयार हो गया तब भगवान ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस पुल पर, अपने ही बनाए हुए पुल पर क्या करना चाहिए, चल देना चाहिए। तो हनुमान जी अपने कंधे पर किसको रखा, राम को, श्री राम जी को, और अंगद जी ने अपने पीठ पर किसको रखा, यहाँ पे लक्ष्मण जी को। तो ये दोनों तो सवार हो गए कंधे पर। अब बाकी जितने बानर बाल सब उछलते मस्ती लेते हुए अब पुल पर लंका की ओर चल देते हैं। यहां पे देखने लायक है, सब इतना मस्ती करके थे, इतनी मेहनत से जब पुल बनाए हैं तो पुल का आनंद भी उठा रहे हैं। अब भगवान की सुंदरता को देखने के लिए जितने भी समुद्र के घड़ियाल, मगर, मछलियां, बड़े बड़े जो जानवर, जो श्वेल, जो समुद्र के तट है, सब प्रकट हो गए, सब नीचे से क्या हो गए, ऊपर आ गए, सिर्फ भगवान का दर्शन करने के लिए दोनों तरफ से। तो बीच में ऐसे पुल है, इधर भी मगर, इधर भी सारे जानवर, तो एक तरह से पैरेलल पुल बना दिए। क्या बना दिए? पैरेलल। तो बानर भालू बड़ा आने तो उनके ऊपर से भी चल रहे थे, अब वो नीचे नहीं जा रहे थे, इसलिए कि वो हर हाल में भगवान को दर्शन पाना चाहते थे। तो पुल के ऊपर से भी जा रहे हैं, नीचे से भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े बालर थे आनंद लेने के लिए छोटे बालों को पकड़ करके फेंक देते थे, अपने लोक लेते थे, ये सब लिखा, उछालते थे, पकड़ लेते थे, मगर सब आमोद प्रमोद आनंद लेते हुए, क्योंकि बानर स्थिर नहीं रह सकते है ना, वो चंचल होते थे, चंचलता इसमें भी दिखा रहे हैं है ना, सब मौज मस्ती लेते हुए अब पुल पे जा रहे हैं। जितने भी विद्याधर देव लोग हैं सब आनंद उठा रहे हैं कि भगवान अब, और इस तरह से भगवान पहुंच जाते हैं कुछ घंटों में कहाँ, समुद्र के उस पार। जब भगवान समुद्र के पास पहुंच जाते हैं तब उन्होंने कहा कि आप लोग सब विश्राम कीजिए, बड़ा मेहनत किया है, और इधर जो है रावण जो है, जब रावण को पता चला है ना कि राम जो है समुद्र पर पुल बना करके और इस पार आ गए, लंका के बिल्कुल करीब आ गए हैं, जैसे ही समाचार मिला उसको, पहली बार रावण अपने 10 मुख से बोला, हमेशा एक ही मुख से बोलता था जो सेंट्रल में, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्चर्य रावण के लिए, कभी रावण सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि कोई पुल बना करके आ सकता है ना, लेकिन भगवान राम ने वो करके दिखाया जो रावण नहीं चाहता था, नहीं सोच सकता था। तो पूरा 10 मुझसे, अब समुद्र के 10 नाम उसने एक साथ 10 मुख से ले लिया है ना, और उसको यही श्राप था कि जिस दिन रावण दसों मुख से बोलेगा उसी समय उसका मृत्यु की घड़ी आ जाएगी। ये भूल गया हो पहले कि उनको बोलना नहीं चाहिए था, श्राप था उसके साथ, लेकिन भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, पुल बना दिया समुद्र पर, है ना, और उससे रहा नहीं गया और दसों मुख से बोल उठा, है ना, और मान गया, है ना, कि उत्तम है। अभी तक तो तपस्वी तपस्वी बोल रहा था। और इधर भगवान सुग्रीव, अंगद, जामवंत और हनुमान जी से राय मशविरा करने लगे। उधर मंदोदरी रावण को समझा रही है। मंदोदरी बहुत भक्तिन थी। तीन लोग माल्यवान, मंदोदरी और विभीषण जब तक वहां थे, और कुंभकर्ण, ये लोग हमेशा रावण को ही समझाते थे कि किसी भी प्रकार से सीता जी को क्या करो, वापस कर दो। मंदोदरी ने यहां तक कहा रावण से कि देखो, पुल का निर्माण करना ये आसान काम नहीं, उन्होंने करके दिखा दिया। जिस बानर भालू को तुम्हारे राक्षस बोलते कच्चे खा जाएंगे, है ना, ये उनकी भूल है, ये मूर्खता है। आप खुद सोचो मेरे स्वामी, इतना बड़ा बाली जिसका बल आपको अच्छी तरह पता है, रावण को 6 महीने दवाई का पता भी नहीं चला, इतने बड़े महान बाली को एक बाण से मार दिया। आपके भाई खरदूषण त्रिशिरा, जो आपके ही समान बलवान थे, उनको खत्म कर दिया। आपके मामा मारीच की क्या दुर्दशा की आपको पता है, सब कीड़ा लगे। और आज देखिए, पुल का निर्माण भी कर दिया और उसके बावजूद भी आपकी आंख अगर नहीं खुलती तो ये आपका दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहती हूं, मंदोदरी कहती है, कि किसी न किसी तरह से आप सीता जी को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण तस से मस नहीं हुआ, क्योंकि भीरू अब तो अभी तो शुरुआत है, है ना, है ना, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है। जब आरंभ युद्ध होगा तो हमारे राक्षस ऐसा बाण को पकड़ पकड़ के खाएंगे, तुम तो देखना कैसे युद्ध होता है। अभी अहंकार इतना था ना, अहंकार बड़ी खतरनाक चीज होती है। कहे कि फिर प्रभु आप मान, नहीं माना। इतने में अब इधर दोनों तरफ विचार विमर्श चल रहा है। अब इधर भगवान राम ने कहा, अंगद, एक बार युद्ध आरंभ करने से पहले फिर भी शांति दूत बनकर के जाओ, और अगर अभी भी रावण समझ जाता है तो मैं इसको माफ कर दूंगा। अब आप देखिए, भगवान राम बड़े ही मर्यादित ढंग से, है ना, अब बड़े ही तरीके से एक हाथ से उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, कसते जा रहे हैं शिकंजा, और दूसरे हाथ से समझौता भी का प्रस्ताव भी देते रहे। देखिए, यही महानता है। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, कृष्ण अंत तक यही चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए स्वयं कृष्ण शांति दूत बन करके, लेकिन धृतराष्ट्र की मंडली, अभी जो जेंटलमैन यहां बैठे थे आपके सामने गए, यही धृतराष्ट्र, में बताना भूल गया, गिरिजा शंकर जी आए थे हमारे पास, है ना, यही धृतराष्ट्र का रोल किया था, उसको मुझे याद नहीं, मैं बोल देता, आप लोग देख लेते उनसे, है ना, वही थे। कल ही अमेरिका से आए, तुम्हारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो फोन किए थे, तो उनको बुलाए थे, एक फिल्म फेस्टिवल है चंडीगढ़ में, उसके लिए आया। अमेरिका में ही रहते हैं, उनका दो मकान बम्बई में। अमेरिका तो जो धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र मंडली और इस सब जो है नहीं माने, युद्ध हुआ। तो भगवान राम है ना भी समझौता कर रहे हैं कि एक अंगत एक बार जा करके किसी तरह से समझाओ, है ना, क्योंकि अंगत बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे। अंगत किसका बेटा है? बाली के बेटा। जब बाली इतना बलवान था तब बेटा भी ऐसा होना ही चाहिए। बलवान भी थे बुद्धिमान भी थे, है ना। तो इस बार हनुमान जी को नहीं भेजा। बड़ा अच्छा दृश्य है, जब अंगद जी ने कहा कि वे समझा करे कि अगर अभी भी रावण सीता जी को वापस कर दे तो मैं उसको क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। जैसे हम आए हैं वैसे हम सब सेना लेकर के और सीता जी को लेकर के वापस चले जाए। ये प्रस्ताव लेकर के अंगद गए, छलांग लगाया है ना। छलांग लगा करके जैसे ही लंका में प्रवेश किए, सारे राक्षस भागना शुरू कर दिए। वो लोग ये समझे कि यही वो बानर है, कि बानर से व्यक्ति जैसे दिखते थे कि जो लंका जलाए। सब डर के मारे भागने लगे। आप खुद सोचिए, एक अकेला हनुमान जी ने दहशत फैला दी थी अपनी लीला से लंका में। कुछ तो डर के मारे अब पहले आप रास्ता बता रहे कि ये यही रास्ता जाता है रावण के पास। इतने डरे हुए थे खुद से। क्या दृश्य था कि वही राक्षस लोग जिसके बल पे रावण गर्व कर रहा है कि हमारे कच्चा खा जाएंगे, और जब अंगद आए तो भूख गायब हो गई, भागना शुरू कर दिए राक्षस लोग। खैर अपने आप बहुत राक्षस हाथ जोड़ कैसे खड़े हो गए, रास्ता भी यही रास्ता है सोच के मार गए। कहे कुछ बात तो बहुत मार खाया था। हेलो, सब यही जाने कि वही पार्लर है। अंगद पड़े ही बल के साथ गुस्से में थे और उन्होंने अपना रूप और विशाल कर लिया, बहुत भयानक है ना भाई। बाली की बेटा बलवान थे, से उनको देख करके रोष देख करके अब सीधा रावण के दरबार में पहुंच गए, क्योंकि रास्ता मिलना बड़ा आसान था। सब राक्षस लोग खुद ही पहुंच जाते हैं कि भैया जो ताकत दिखा ली उन्हीं को दिखाओ, है क्या हमें बसक दो मत मारो, है ना। इस बेचारे खुद बिना बताए रास्ता बता रहे, कितना हनुमान जी की दहशत थी। हनुमान जी ने जो कांड कर दिया लंका में, अब जो है सब प्रवेश है। अंगद जी पहुंचे वहां पे, रावण जो बहुत तुष्ट था है ना, बैठा सिंहासन सोने के सिंहासन बैठा है। राम रख तुम्हारा नाम क्या है ना। अंगद का मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूं। बाली का नाम सुनते हो सुनते ही और जरा संकोच कर गया है ना। उसने कहा कि तुम बाली की बेटे हो, तीन साधारण जो मनुष्य हैं जो मुनि के बेस पे बन बन भटक रहे हैं, इनकी गुलामी क्यों कर, इनकी दास क्यों बने हुए भगवान राम को रहे है ना। अरे तुम अपने पिता का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो कि आपके पिताजी इतने बड़े बलवान हैं, अब इतने बड़े बाप का बेटा हो करके अब तुम ये बन बन भटकने वाले तपस्वियों के सेवक बने हो। रावण ने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी बाली इस समय कहाँ हैं, है ना। अंगद ने कहा कि रावण 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर है ना तुम खुद जाकर के उनसे मिलना गल लगा कर पूछना कहा है ऐसी बात बोली लिखा हुआ है राम समझा ले इस बात को क्या करे अंगद समझ रहे थे कि दस दिन में बात दस दिन कुछ दिन बाद में खुद जा करके हमारे बाली जहां है जा करके खुद गले लग करके मिल लेना वही उन्हीं से हाल चाल पूछ ला क्योंकि भगवान के साथ राम के साथ जो ऐसा व्यवहार करता है उसका कहाँ स्थान होना है वो बालिक आप भी कुछ दिन में बालिक के पास ही जाकर के उन्हीं से हाल समाचार ले ले रावण खिसिया गया बहुत चालू था वो बहुत दिमागदार था उसको गुस्सा आ गया कि बहुत तो इतना दीठ नीच बानर है ना तुम्हें पता नहीं किससे बात कर मैं दसकंदर है कि मैं जब बोलता हूं सब ठहर जाता है मेरे इशारे पर शूर अपनी गर्मी को भूल जाता है चंद्रमा निस्तेज हो जाता है समुद्र की लहरें ठहर जाती हैं तुम इस तरह से उदंड होकर के मेरी बात कर रहे हो अंगद ने कहा कि रावण तुम्हारा अहंकार बोल रहा है तुमको पता नहीं है कि मैं किसका दास हूं भगवान राम जो पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं जिनके भ्रगटी मात्र से संसार का प्रलय भी हो सकता है सृजन भी होता है जिन्होंने हमारे पिता बालिक एक बाण में वहां पहुंचा दिया है ना सब पूरा क्या है ना और जिन्होंने भी पुल का निर्माण कर दिया है ना इसलिए रावण अब तुम्हारा इसी में भला है कि अभी भी भगवान हमारे प्रभु वापस चले जाएंगे अगर तुम इज्जत के साथ सम्मान के साथ आदर के साथ सीता जी क्या कर दो वापस कर दो इससे क्या होगा कि प्रभु भी प्रसन्न हो जाएंगे हम लोग भी जैसे आए थे वापस चले जाएंगे और तुम भी अपना एक छत्र राज करो सब सकुशल बच जाएंगे लेकिन रावण माने को तैयार नहीं था फिर उसने डांटा टपटा इतने में अंगद को गुस्सा आ गया इतनी तेजी से अपना पांव पटका पृथ्वी पे है नहीं कि रावण हिल गए जैसे भूकंप आ गया उनका पांव जमाते ही जैसे कोई भूकंप आ गया उसके सर का जो मुकुट था ना वो नीचे गिर गया और अंगद ने क्या किया तुरंत उसको उठाकर फेंक दिया और कहां गिरा भगवान के पास भगवान के पास गए भीषण ने कहा कि रावण का मुकुट है लगता है अंगद जी कुछ तहलका मचाए हुए देखिए बहुत संभल कर रहा है उसने बोला पकड़ो इस बानर को इसका माल डालो तो दो चार जो उसके थे राक्षस चमचे लोग है ना और फरसा लेकर के दौड़े है ना इतना घोर के गुस्से में अंगद जी गए वो डर गए वो खड़े हो गए वहीं पे लगे है ना और अपना पांव से जमा दिया कहे कि रावण मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस तुम्हारी महा इस सभा में कोई वीर अगर मेरा पांव उठा दे तो मैं सीताजी को हार जाऊंगा तुम आजीवन सीताजी पालना हम लोग बिना सीता के वापस चले जाएंगे जब ऐसा कहा तो किसके विश्वास पर राम की शक्ति के विश्वास पर अंगद ने क्या किया पृथ्वी पर अपना पांव जमा दिया कहते ना अंगद का पांव जैसे चिपक गया हो पृथ्वी से इस तरह से बड़े बड़े जितने राक्षस थे डींक हांकते थे कि हम बाण को चबा जाएंगे खा जाएंगे एक कर देंगे सब वहीं वो भी बैठे थे वो लोग भी बैठे थे है ना दुर्मुख जिसने बोला था है ना तो रावण बोला बहुत खा रहे थे उठो सब राक्षस आए अंगद जी का पांव जो है उठाने का प्रयास करे, लेकिन टस से मस नहीं, चिपक गया जैसे चुंबक की तरह पकड़ा। यहां तक कि इंद्रजीत उसका सबसे जिस पर बड़ा गर्व करता था मेघना, वो भी आया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और रावण की लगा इतना बड़ा आसान कंडीशन रख दिया, अगर इसका पांव ही तो उठाना है, अगर पांव उठा दे तो सीता हमारी हो जाएंगी। रावण इतना निर्लज था, इतना बेहतर खुद उठाने के लिए गया, इतना बड़ा लंकापति राजा रावण। और एक प्रभु के दास का पैर पकड़ने जा रहा था। अब अंगद ने क्या किया, खड़े रहे। जब वो रावण खुद आया नजदीक, जैसे पहुंचा है ना, जैसे झुकने का प्रयास किया पैर पकड़ने का रावण का, अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया कि अगर यही इसी तरह से तुम मेरे प्रभु के चरणों में झुक जाते तो ये स्थिति नहीं आती रावण। तुम हमें तुमका एक दास है ना, हमारे चरणों पर झुकने से तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं नहीं चाहता कि एक दास का तुम चरण छू, अगर छूना है तुम्हारे जो मालिक हैं उनकी चरणों में जाकर घिरो। रावण सक पका का शर्म कर गया है ना। और अंगद कहे कि अब तुम चूंकि मेरी बात नहीं माने हो, इसलिए अंगद इतना कह करके और वापस छलांग लगाते हुए और भगवान के पास आके खड़े हो गए। इसका मतलब यह था कि अब युद्ध तो होना ही होना है ना। तो विभीषण और हनुमान जी से भगवान राम ने राय ली है। अब हनुमान जी तो चंपा चंपा उनको मालूम था है ना, और रावण को भी मालूम था है ना। और रावण विभीषण और हनुमान जी सब पूरा प्लान बनाए। हनुमान जी ने कहा कि चार प्रमुख दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे की तरफ हम लोग रहेंगे, सब कि कहाँ से सब किस तरह से अटैक करना है, अर्थात चारों लंका पर जब धावा बोलेंगे चारों तरफ खोलेंगे। इधर लोग प्लानिंग कर रहे थे, उधर जो दूत आया हुआ था रावण अंगद के जाने के बाद घबरा गया है ना रावण। फिर मंदोदरी ने समझाया है ना, लेकिन बात नहीं मानी। इतने में उसका दूत आया, वो दूत ने क्या किया पूछा, बड़ा अच्छा है इसने, उसने कहा कि हे रावण, अब आप लोग ध्यान सुनिए, कितने बानर हैं है ना। रावण को बताया कि उसने बताया कि 100,000 को 1,00,000, ध्यान सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। 100,000 को कितना कहते हैं, 1,00,000। 100,000 को 1,00,000 कहते हैं। तो रावण 100,00,000 1,00,000 के बराबर होता है, कितना, 100,00,000 1,00,000 के बराबर होता है। और 1,00,000 करोड़ को 1 शंकु कहते हैं, ध्यान सुनिएगा तवान, 1,00,000 करोड़ को 1 शंकु कहते हैं, तथा 1,00,000 शंकु को महाशंकु कहते हैं, और 1,00,000 महाशंकु को बृंद कहते हैं, और 1,00,000 बृंद को पद्म के बराबर होता है, 1,00,000 पद्म 1 महापद्म के बराबर होता है, और 1,00,000 महापद्म 1 खरब के बराबर होता है, तथा 1,00,000 खरब 1 महाखरब कहलाता है, और 1,00,000 महाखरब 1 सागर कहलाता है, और 1,00,000 सागर 1 ओघ कहलाता है, और 1,00,000 ओघ महो कहलाता है। तो शान ने बताया कि राम की सेना में कम से कम 100 करोड़ महोग बानर है सेना। रावण तो चक्कर खा गया, इतना सुन करके उसके कैलकुलेटर में ले आएगा दिमाग से बाहर। इसीलिए भगवान राम ने जानते क्या किया था, भगवान राम ने इसीलिए जितने बेचारे छोटे मोटे बानर थे, जब सेना सजने लगी जब युद्ध की तैयारी होने लगी, अब यहाँ देखिए जब युद्ध की तैयारी प्लानिंग बन रहे थे, तो भगवान राम ने कहा कि जो हमारे प्रमुख बानर हैं सेनापति, वो सब फ्रंट पे रहेंगे, फ्रंट पे वही रहेंगे, लड़ाई करेंगे, प्लानिंग बन रही है, और जो मध्यम उनसे जो कमजोर है बीच में रहेंगे, और जो सबसे कमजोर बानर हैं वो सबसे पीछे रहेंगे, फिसड्डी रहेंगे। ऐसा प्लान बना है कि इस तरह से तीन व्यूह रचना होगी, प्रमुख बानर हमेशा आगे लड़ेंगे, फ्रंट पर रहेंगे, उसके बाद बीच में रहेंगे, और जो सबसे कमजोर बानर हैं वो बेचारे वो भी लगे हुए थे, है ना, प्रभु की सेवा सभी करना चाहते थे। तो भगवान ने उनको क्यों रखा, इसलिए कि कम से कम युद्ध तो नहीं करेंगे लेकिन भीड़ तो मचाएंगे। रावण जब अपने अट्टालिका से, कि रावण ने ऊपर एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया हुआ था, है ना, रंग महल जी कहते, जहाँ पे नृत्य संगीत डांस का कार्यक्रम होता था, तो रात को जब बहुत थकता था तो रात जाता तो वहाँ पे, तो वहाँ से जब वो देखा, है ना, तो इतना चारों तरफ देख करके, और जब शान ने ये कैलकुलेट करके बताया तो उसके दिमाग से परे हो गया, है ना। तो भगवान राम कहते यूनिटी, टीम वर्क, एक टीम वर्क कैसे होती है भगवान राम सीखना चाहिए, कि सबको बांध करके रखना, है ना, और सब में जोश डाल के रखे थे, है ना, कि भगवान जानते थे कि अगर ये युद्ध नहीं करेंगे लेकिन भीड़ तो मचाएंगे, जिसको देख करके शत्रु ऐसे घबरा जाएगा, यही हुआ, है ना। तो इस तरह से युद्ध की तैयारी हो गई, और दूसरे दिन सुबह होते ही नियम वही था जैसे महाभारत के युद्ध में, दिन में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध होता था, जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध समाप्त हो जाता था, ये सिस्टम शुरू चला रहा। अब जो है दिन में भयानक युद्ध अटैक शुरुआत हो गया, इतना भयानक युद्ध रासों के बीच में और उसमें हुआ, बाणों के बीच में महायुद्ध आरंभ हो गया, कितने राक्षस, और इनके पास कोई अस्त्र नहीं था, राक्षस का ही गदा, उन्हीं का तीर, उन्हीं का तलवार छीन करके मारते थे, पेड़ वृक्ष ईंटा पत्थर, है ने, और किसी बाणर पकड़ लेते थे तो उनको गुदगुदाते थे, नोचते थे कैसे, ऐसे इस तरह से मारते थे, है ने, बड़ा जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ, है ने। तो जो प्रमुख प्रमुख हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, जब युद्ध हुआ था तो हम अब चर्चा करेंगे मेघनाथ का, जो बेटा था उसका, बड़ा बहादुर था, और उसको ना ऐसा आशीर्वाद था, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, सबका आशीर्वाद था, कि वो युद्ध करते करते ना अदृश्य हो जाता था, वो दिखाई नहीं देता था, अब पूरा तीर छोड़ता था, पूरा युद्ध करता था, दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को मारना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बड़ा भयानक युद्ध गया, यहाँ तक कि बानरों की सेना में खलबली मच गई, उसको लेकर के सब भागना शुरू है। तब लक्ष्मण को भेजा गया कि लक्ष्मण जी जो है आए, बड़ा भयानक युद्ध हुआ लक्ष्मण जी के साथ। जब शाम होने लगी, है ना, युद्ध होते होते, और दोनों वीर, क्योंकि उसका नाम इंद्रजीत था, क्योंकि उसने इंद्र को पराजित करके, इंद्र को हरा करके, स्वर्ग से बांध करके ले आया और अपने लंका को बांध दिया था, है ना, वो तो ब्रह्मा जी आए, सब लोग आए तो इंद्र को छुड़ाए, है ना, इतना बलवान था, तभी उसका नाम क्या था, इंद्रजीत। और जो लक्ष्मण जी हैं वो शमशेष अवतार हैं और इंद्रजीत कहलाए, क्योंकि उन्हें शादी तो हुई लेकिन पत्नी के साथ रहे नहीं, है ना, उनको तो वहीं छोड़ के आ गए थे, तो इंद्रजीत अपने इंद्री का पूरा उन पर क्या था, नियंत्रण था, इसलिए इंद्रजीत और इंद्रजीत में युद्ध चल रहा है, अब कोई हार नहीं मानता, इंद्रजीत जो मेघनाथ था, रावण का बेटा था, उसको ये था कि इसको वही मार सकता है जो इंद्रजीत होगा, ऐसा था, बड़ा भयंकर था। शाम होते होते है ना, जो मेघनाथ था एक ऐसा बाण मारा जिसमें आदमी मरता तो नहीं है लेकिन क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसने वो बाण मारा लक्ष्मण को, लक्ष्मण गिर गए। जब लक्ष्मण गिर गए तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मेघनाथ बड़ी इज्जत के साथ सम्मान देते हुए अपने रथ से उतर करके और भागो लक्ष्मण जी को पूरी ताकत लगा दी उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाया है ना। इतने में हनुमान जी अंगद सबको पता चला कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उनको बाण लग गया है। हनुमान जी बड़ी सरलता से लक्ष्मण जी को उठा के लाया। अब पूरे बानर लोग बेचारे सब, क्योंकि सूर्यास्त भी हो गया, सब जो है ठप हो गया। अब मेघनाथ क्या किया, जा करके एक यज्ञ शुरू कर दिया कि अगर वो यज्ञ पूरा हो जाए तो वो फिर उसको मार नहीं सकते थे, ऐसा यज्ञ शुरू कर दिया, अपने यज्ञ में लग गया। इधर हड़कंप मच गया, सब लोग रोने लगे। भगवान राम स्वयं अपनी जंघा पे उनका सर रख करके है ना कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना मेरे भाई, आपके बिना मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना, आपकी पत्नी से मैं क्या जवाब दूंगा कि जिसके भरोसे मेरे भरोसे हम आप आए थे। इस करके भगवान राम भी रो रहे हैं। जामत ने कहा कि एक वैद्य है जिसका नाम सुकेण वैद्य है, है ना, तो लंका में रहता है ना, तो रात में तुरंत यह कि कौन जाएगा कि हनुमान जी सब परिचित हैं, है ना, हनुमान जी को भेजा गया। जब हनुमान जी गए सुकेण वैद्य के घर पे तो उस समय वो सो रहे थे। सुकेण वैद्य क्या रहते अपने घर में पलंग पे सोए हुए थे। अब हनुमान जी ने विचार किया कि अब इनको हम कैसे लेके चलें, और अगर हम इनको लगते हैं और जग जाएंगे तो कुछ औषधि लेके चलें कि न चले, तो उन्होंने कहा कि हम इसका पूरा घर ही उखाड़ के लेके चलते हैं, घर सहित उखाड़ के ले, वो सोते ही रह गए, घर से उखाड़ कर ला करके वहां पे रख दिया। अब तब उनको जगाया गया, जब सुकेण वैद्य जगे तो बाणों के बीच में थे। तो इसके पीछे एक और रहस्य कि हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि मान लो अगर हम इनको उठा करके लेके चले जाते, अगर जड़ी बूटी औषधि नहीं देते, ये बोल देते कि औषधि तो घर में ही छूट गई, अब फिर हमको उनको लेके जाना पड़ा, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, एक एक टाइम बचाना बहुत जरूरी था, है ना, तो हमका घर ही उठा के ले चलेंगे, अपना खुद ही ढूंढ लेंगे, बोले घर में कहाँ रखा है जड़ी बूटी, बड़ा दिमाग था, ताली बजाई दीजिए सर। हनुमान इसी ने, हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने यही दिमाग लगाया है ना कि खाम खाम 10 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, अपना जो इनको देना पड़ेगा घर घर ही रहेगा तो अपना निकाल कर दिखा देंगे। तब जो है उन्होंने कहा, सुकेण वैद्य जी ने कहा कि एक द्रोण, जो द्रोण गिरी है पर्वत है, वहाँ पे संजीवनी बूटी अगर आ जाए सूर्योदय तक, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से पहले अगर आज प्रातः अमृत वेला में, तो लक्ष्मण जी की मूर्छा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हो जाएंगे सब जितने बानर हैं सब मुंह देख लें, कौन जाएगा, कि रात आधी रात बीत रही है, समय बहुत कम है, ध्रुण गिरी दूर भी है ना, तो सबकी नजर किस पर आपकी टिकी, हनुमान जी। हनुमान जी बहुत महान है, आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय शक्ति। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। इधर रावण को जब पता चला कि सुकेण वैद्य ने जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान भेजा है, और दौड़ करके कालिनी में एक राक्षस था उसके पास गया, कह कि देखो किसी ऐसी तो माया जाल रचो है ना कि उन सूर्योदय तक उनको आने मत दो वापस, तो सूर्योदय हो जाएगा तो एक छोटा भाई तो मारा जाएगा, है ना, तो इसलिए तुम ऐसा माया जाल रचो कालने में, है ना, कि जिससे कि सब काम हो जाए। अब कालने में क्या किया, पहले तो शिक्षा दिया है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कालने में सोचा कि जब हमको मरना ही है तो हम राम के दूत के हाथ से मरने ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, तो चल के अपना माया जाल फैलाते हैं। तो जिस रास्ते से, जिस रूट से हनुमान जी जा रहे थे द्वारका में, वहीं पे उसने अपना माया जाल इतना भव्य रमणीक आश्रम का निर्माण कर दिया कि हनुमान जी भी भौचक्के हो गए कि रमणीक स्थान देख करके उनको भी अच्छा लगा, भ्रमित हो गया और तुरंत जो है देखिए इतना सुंदर सरोवर, कुटिया, झील, झरने, हंस है ना, कोयल की आवाज, अब फूलों के बढ़िया बढ़िया बगीचे, फिर भव्य मंदिर, वहाँ पे एक साधु बैठा हुआ था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ा तेज चमक रहा था उस साधु के। तो हनुमान जी कहे कि तो थोड़ा सा विश्राम कर ले, बहुत थका हुआ, दिन भर युद्ध किया, रात में फिर दौड़ना पड़ रहा है, भाई दिन भर तो युद्ध में थे, थकावट तो लगेगी, कि थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, है ना। और गए साधु के पास, प्रणाम किया, है ना, और साधु ने बोला आशीर्वाद, बच्चा मुझे सब मालूम है क्या हो रहा है, इसमें राम का छोटा भाई बेहोश है, मूर्छित हो गया है, उसका बड़ा भाई राम जो है रो रहा है, सारे बानर भालू की आंखों में आंसू टपक रहे हैं, है ना, और तुम जो है जा रहे हो, हमको सब पता है। तो हनुमान जी सोचे ये तो बड़ा बड़ा सच्चा साधु है, मगर साधु ऐसी बात करे है ले, तो लोग विश्वास कर लेते हैं, है ना। तो करे कि आओ बच्चा तुम जाओ स्नान करो सरोवर में, बहुत रमणीक सरोवर में स्नान करो, और फिर क्या करो, वापस आओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, मंत्र दूंगा, दीक्षा दूंगा, है ना, ये मस्त जैसा आप कहते हैं साधु जी, मुनि जी जैसा आप कहते हैं। और जैसे ही हनुमान जी सरोवर में पांव रखा, स्नान करने घुसे, एक मकड़ी थी, उसने पांव क्या किया, पकड़ लिया उनका मकड़ी। तो हनुमान जी ने क्या कहा, बड़ी तेजी से मकड़ी को से झटका, और जब ऊपर को से झटका तो वो जो है एक सुंदर कन्या बन करके और देवलोक में चली गई। लेकिन बोला कि हनुमान जी आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, क्योंकि मैं श्रापवश मकड़ी बनी थी, दुर्वासा मुनि के श्राप से मैं क्या बनी थी, मकड़ी बनी थी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जब हनुमान जी का चरण पकड़ोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो मेरा तो उद्धार आपने कर दिया, लेकिन वो जो कपटी मुनि है उसका उद्धार करिए, वो मुनि नहीं है, वो तो कपटी साधु है। तो साधु के बेस में महाभयानक राक्षस है। तो आजकल कलयुग में भी साधु के बेस में भेड़िए लोग टाइप के लोग घूमते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये सच है कि नहीं सच है, जब उनकी पोल खुलती है तब पता चलता है, जेल में सड़ने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधुओं से क्या रहना चाहिए, थोड़ा सावधान से, गिरुआ वस्त्र के लोगों थोड़ा सावधान बनना चाहिए, क्योंकि रावण भी गिरुआ वस्त्र पहनकर सन्यासी के वेश में आया था, राइट, और एक कालनेमी भी गिरुआ वस्त्र पहन करके क्या हुआ था, आया था, है ना। तुम्हारा बहुत जस करना चाहिए। अब हनुमान जी की सारी स्टोरी क्या है समझ में आ गई। अब हनुमान जी मुस्कुराते हुए आए, बच्चा बड़ी जल्दी स्नान करके आ गया, कि हाँ गुरु जी, है ना, कि आप बच्चा बैठो, मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि गुरु जी हमारा काम थोड़ा एडवांस होता है, हम पहले गुरुदक्षिणा देते हैं बाद में दीक्षा लेते हैं। ये बात तो समझ नहीं आया, कहे कि आपको दीक्षा की जल्दी है लेकिन मुझे पहले गुरुदक्षिणा देने की जल्दी है। तो हम पहले गुरुदक्षिणा देंगे, और फिर आप मुझे दीक्षा दे दिला, है ना। इतना कह करके यही हनुमान जी ने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी ना उससे उसका पूरा सर से लेकर नीचे तक लपेट करके सटक सटक तीन बार सटक करके दक्षिणा दे दी, अर्थात काले मर गया, उद्धार हो गया। मरते वक्त लेकिन वो राम का नाम लिया, वो इसी उद्देश्य आया था क्योंकि उसका भी क्या हो, उद्धार हो। कि कालनेमी और जो मकड़ी थी ये दोनों गंधर्व थे और इंद्र के दरबार में ये संगीत गा रहे थे, गीत गान कर रहे थे, तो सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न थे, खुश थे, ताली बजा रहे थे, है ना। जो दुर्वासा मुनि थे वो प्रसन्न नहीं हो रहे थे, है ना। तो इन दोनों ने क्या किया था, मजाक कर दिया था, हंस दिया था इनके पर, तो उन्होंने श्राप कर दिया कि तुम लोग क्या हो जाओ राक्षस बन जाओ। वो मकड़ी बन गई और ये क्या बन गए, कालनेमी बन गया, लेकिन उद्धार ऐसे हुआ। तो इस तरह से हुआ, है ना। तो राम का नाम लेकर के उसका उद्धार गया। अब हनुमान जी जब द्रोण पर्वत गए तो वहां भी रावण ने चमत्कार किया कि जो लक्षण बताए थे सुकेण वैद्य ने, है ना, वो ढूंढने लगे तो कही गए थे सब एक ही जैसे लग रही है, ना। तब हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, कहीं समय क्यों गवाए, हम पूरा द्रोणगिरी पहाड़ी लेकर चलते हैं, अपना ढूंढ लेंगे जो होगा वो पहचानते हैं, है ना। हम क्यों पहचान में गए, पूरा द्रोणगिरी पर उठा करके और क्या करें लेकर के आए। और अब इधर देरी हो रही थी क्योंकि सूर्योदय होने ही वाला था। सब ये दृश्य हमारे यहाँ लगा हुआ मंदिर में आपको देखेंगे एक तस्वीर, फोटो बड़ी अच्छी फोटो बनी हुई है जहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं लेटे हुए हैं, आँख मुँह मूर्छित हैं, भगवान की गोदी में सारे बानर भाव दुखी हैं और हनुमान जी द्रोण गिर लेकर के आ रहे हैं, ऐसा दृश्य टेम्पल हॉल में लगाई फोटो, यही इस बार यही लीला है। और उसी समय बिल्कुल राइट टाइम एंट्री किया, जैसे ही सूर्योदय होना था अब 5 मिनट पहले जो है भगवान हनुमान जी क्या लैंड कर गए, पूरा पहाड़ लेकर के और तुरंत जो है दौड़कर सुकेण में, वो पहचानते थे, पूरा पहाड़ उठा के लेके आए, वो पहचानते, तुरंत जो जल लाया और उनके नाम से रगड़ करके सुंघा दिया और टनाटन खड़े हो लक्ष्मण जी एकदम उत्साह के साथ जोर से खड़े। और जब हनुमान जब खड़े हो गए लक्ष्मण जी तो भगवान राम मिलकर के उन्होंने प्राप्त किया, कहे कि मैं अभी मारता हूँ मेघनाथ को। और उसी समय कि सूर्योदय हो गया था, लक्ष्मण जी चल दिए अपना धनुष बाण लेकर के मेघनाथ को मारने के लिए, है ना। और उधर मेघनाथ यज्ञ में लगा हुआ था, है ना। तो विभीषण ने कहा कि भगवान राम किसी तरह से यज्ञ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो जितने बानर भालू हैं प्रमुख हनुमान जी कंगर के भेज दो, वो बाधा डालें और उसको मजबूर करें। इधर लक्ष्मण जी तैयार होकर के गए और उधर से लोग पहले जाकर एडवांस में जा करके उसका यज्ञ बन गया। अब वो नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन इन लोगों ने इतना उत्पात किया वहाँ पे कि उसको यज्ञ अधूरा करके और लड़ने के लिए आ गया। अरे लोग यही इनका चाल थी, अरे लोग वहाँ तक पहुँचा जहाँ लक्ष्मण खड़े थे। अब युद्ध, भयानक युद्ध शुरू हुआ, है ना। बहुत देर के बाद, है ना, हर प्रकार के नाटक, इतना भयानक युद्ध बताया गया है कि मल मूत्र मिवाद खून धूल दर्श गर्म रेत सबकी वर्षा कर देता था अदृश्य होकर के, है ना। बड़ा वो दिखाई नहीं देता और चारों तरफ से बाण आ रहा था, है ना। लेकिन लक्ष्मण जी महान, लक्ष्मण जी ने क्या किया, कहे कि अब बहुत हो गया इसको खेल खिलाए हुए, अब उनका उन्होंने भगवान राम का ध्यान करते हुए एक ऐसा बाण निकाला जो कि सीधा उसके छाती में प्रवेश किया। अब मेघनाथ जो है खत्म हो गया, अब मेघनाथ का जो सर था सीधा जा करके लंका में गिर गया, है ना, वहाँ पे। इस तरह से मेघनाथ को मारा गया। पुष्प जितने देवता थे वो पुष्प लेकर तैयार रहते थे, जैसे ही एक राक्षस मार गया पुष्प वर्षा की, भगवान का गुणगान गाया, है ना। इस तरह जैसे ही मेघनाथ का वध हुआ रावण को बड़ा दुख हुआ, है ना। उसी समय कहा कि मेघनाथ के मारने के बाद है ना, जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण अब सो रहा था, युवा के कुंभकर्ण को क्या करो, जगाया जाए। अब उसमें उसका सोने का समय था है ना, तो कुंभकर्ण जब सो रहा था तो बड़े बड़े भयानक भयानक जो राक्षस थे उसको जगाने के लिए गए है ना। और जैसे ही उसका दरवाजा खोला, इतनी बदबू गंदगी मार रही थी है ना, असर नहीं, लेकिन राक्षसों की तो आदत है सब सहन करने की। वो जो सांस ले रहा था उसके सामने राक्षस खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी तेजी से सांस खींचता था निकल, कितनी बड़ी शरीर थी उसके, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नाक, तो उसी हिसाब से धौकनी की तरफ उसका सांस भी लेता था है ना। तो इतना सांस लेता कि अगर उसके रेंज में आ जाए तो आदमी घुस जाएगा है ना, और फिर निकल जाएगा। तो बताया गया है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस तरह से जैसे लहर किड़ होती थी, अगर कोई राक्षस आ गया साथ, ऐसे आ रहा है जा रहा है ऐसे होगा, तो सब उसके नाक की सीध के किधर खड़े होते है ना। अब उसको जगाए कैसे, उसके कान पे दो बड़े बड़े कान थे, खड़े होकर के एक साथ नगाड़ा, तुरही, मजीरा, झांस, करताल, असंख उसके कान में बजाने लगे सब कि जागे। इतना सब, इतना नगाड़ा पीटा, सब पीट दिया है, गए कितने नगाड़े टूट गए बजाते बजाते, वो उठाने तरह तरह के पाइप से कान में पानी डाले, सब पूरा लगा दिया, नहीं टूटा। फिर हाथी, घोड़ा, ऊंट उसके ऊपर दौड़ाया गया है ना, फिर भी उस जो है सोता ही रहा। श्राप वश वरदान था उसको सोने का, असमय जमाना बहुत। तब 1000 हाथी, कितना 1000 हाथी उसके ऊपर चढ़ाया गया है ना। अब बड़े बड़े गदा में बड़ी बड़ी मोटी मोटी कीलें डाल करके ऐसी गदा से उसकी पिटाई की गई, तब जाकर के वो हिला, हो अर्थात उठा। और उठते ही वो बोला कि, और उसके लिए जगाने से पहले खाने की इतनी व्यवस्था कर दी कि वो उठता ही खाने उसको चाहिए, कि जो आदमी 6 महीना सोएगा उठेगा तो खाएगा ही है ना। तो बड़े बड़े भैंसा, मांस, मदिरा सब पूरा व्यवस्था था। जैसे उठा उसको पहले भोजन दिया गया, फिर किस लिए जगाया गया बताया गया उसको। तो कहे कि मैं यहीं से युद्ध करने जाऊँ, नहीं, रावण का पहले मेरे पास आओ। वो रावण के पास गया, रावण को बहुत डांटा, क्योंकि वो भी किसका भक्त था, भगवान का। वो शुरू से सोने से पहले एक बार बोला था कैसा काम मत करना, तो कही भाई तू मेरी बात नहीं माने, अगर ये सब करने से पहले मुझे जगा दिया होता तो ये नौबत नहीं आई, लेकिन मैं क्या तुम्हारा भाई होने के नाते हमको तो जाना ही पड़ेगा। वो जानता था कि हमारी मौत तो निश्चित है, अब भगवान के हाथों मरेंगे तो मेरा उद्धार होगा। उसने कहा इसलिए मैं पूरा युद्ध करूँगा। अब जब कुंभकर्ण चला वहां पे तो सारे बानर उसको देख करके डर गए, क्योंकि इतना भयानक, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नाक, आंख, बड़ा विशाल, जितना विशाल तो पहले था और विशाल कर लिया कई गुना है ना, इस तरह से जैसे गुर देना। अब बानर बेचारे छोटे से बौने जैसे लगने को उसके चढ़ा, सब भाग खड़े होने लगे, और पकड़ पकड़ करके लपेट करके मुंह में डाल देता था, तो जब मुंह में जाते थे कान से बाहर निकल जाते थे बानर ऐसा लिखा हुआ है कि वो मुंह में डाल लेता था, अब बाल बड़े चालू थे, कान बड़े बड़े थे, कान से बाहर निकल भाग खड़े होते थे है ना। ऊंचाई पे था वहां से कूद ही मार जाते थे, बालों कान से निकल के कूद पड़ते थे है ना, बेचारा क्या करे, बड़ा भयानक। तो भगवान राम ने पूछा विभीषण से कौन है भाई जब भद्र मचा दीवान से ना। तब विभीषण ने बताया, विभीषण तो बैठे ही सीख लें है ना, कि भाई है मेरा, भाई है, बहुत भयानक है, लेकिन ये सब एक टेक्निकली देखने के लिए है ना, ये उतना बहादुर है कि हमेशा सोता रहता है ना, दहशत फैलाने के लिए सही है ना। तो विभीषण खुद गए और किसको, कुंभकर्ण को क्या किया, प्रणाम किया, क्योंकि जब लंका छोड़े थे तब कुंभकर्ण सो रहा था है ना। अब बड़े भाई के नाते वहाँ जा के मिल करके आना चाहते थे, लेकिन वो सो रहा था इसलिए नहीं गए, कि यहाँ पे मौका मिला है तो अपने भाई से क्या किया, पैर छुआ, प्रणाम किया, कुंभ का आशीर्वाद दिया, कहा कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, प्रभु के शरण में तुम क्या हो आए हो, लेकिन मैं क्या करूं करके इतने में युद्ध आरंभ इतना भयानक युद्ध है ना, यहाँ तक कि उस युद्ध के समय फिर भगवान को आना ही पड़ा। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया, इतना बड़ा मुख है ना, और सब वैसे बड़े बड़े हाथ से पकड़ करके मुंह में डालता था, उसके नाक से निकल जाते थे बानर लोग, इसके हाथ से निकल जाता है ना, जामुन तो वगैरह बड़ी ताकत लगा देते थे मारने के लिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं। तब भगवान राम ने क्या किया, कई उसका इतना बड़ा मुख था कि उसके मुख से क्या करे बाणों से भर दिया, उसका मुख पूरा मुख में बाणी बाण ऐसे भर दिया है ना। अब फिर भी वो जो है बाण मुंह में दबाए हुए अपने से भगवान ने कहा कब इसको करेंगे, तो उसका दोनों हाथ काट दिए तीर से। अब से मुंह में बाण भरे हुए इस तरह से अब दोनों दोनों हाथ जो कट गए, और फिर भी धड़ से चला रहा है, पर भगवान ने उसका धड़ जो है अलग कर दिया, और धड़ कहाँ गया, लंका के दरबार में गया, और जो सर उधर चला गया, और धड़ जो है समुद्र में फेंक दिया बाण से करके। इस तरह से कुंभकर्ण का भी क्या हुआ, अंत हुआ। अब जितने भी देवता थे बड़े प्रसन्न हुए, फिर भी इतने राक्षस थे, राक्षसों की इतनी कमी होती चली गई, अब फिर भी राक्षसों की कमी नहीं थी है ना। पर इस बार रावण का नंबर आ पाता है। अब रावण क्या किया, बड़ा भयानक युद्ध, आठ घोड़ों से सजा हुआ रथ पे रावण बैठ करके युद्ध के लिए आया, 60,000 कितने राक्षसों को लेकर के, और जिस तरह से उसने युद्ध आरंभ किया पूरी ताकत लगा दी रावण ने, लेकिन भगवान राम पैदल थे, इंद्र जी प्रसन्न होकर के एक दिव्य रथ भगवान के ला करके पेश कर दिया कि प्रभु आप इस रथ पर बैठ करके, इंद्र के रथ पर बैठ कर, अब मातली जो थे उसको सारथी थे, युद्ध भयानक युद्ध आरंभ हुआ है ना। और उस युद्ध में एक दिन का युद्ध खत्म हो गया, रावण वापस चला गया है ना, क्योंकि उसका जो सारथी था बहुत चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था, जब देखा कि रावण कमजोर है लेके भाग गया। जब रावण का होश आया कि इधर क्यों लेके आया मुझे है ना, फिर वो दौड़ करके गया। दूसरे दिन बड़ा भयानक दिन भर युद्ध होता रहा, और उसके बाद फिर भगवान ने कहा, जब भगवान उसके सर काटने लगे तो नया सर उग जाता था। अब विभीषण साथ में खड़े थे, विभीषण कहे कि मैं इसका सारा सर काट रहा हूँ, अब फिर नया सिर आता जा रहा है, ये क्या रहस्य है। अब विभीषण था ही सर सारे रहस्य बताने के लिए। उन्होंने कहा कि हे राम ऐसे नहीं मरेगा, इसका जो नाभि कोष है, नाभि कोष में अमृत का वास है, आप ऐसा तीर मारे कि उसके नाभि है ना, उसके नाभि का जो अमृत कोश सूख जाए, खत्म हो जाएगा। बस जब इतना विभीषण ने बता दिया, तब भगवान क्या किया, 31 बाण चढ़ाया, तो एक बाण तो सीधा नाभि में लगा, और 30 बाण उसके पूरे शरीर में लग करके और रावण को गिरा दिया। वो राजा रामचंद्र की जय। इस तरह से रावण क्या हो गया, मारा गया, सारे देवता क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, जितने बानर थे वो छन्ने कूदने जश्न मनाने लगे कि रावण मारा गया। तब भगवान ने कहा कि ये बहादुर बानरों, अब सब विलाप करने लगे, मंदोदरी विलाप कर रहे, पूरा भीषण को भी क्रोध आ गया। तो भगवान ने कहा कि ये तो निश्चित है, जो आता है इस संसार में उसको जाना होता ही है, इसलिए हे विभीषण आप एक काम करिए। लक्ष्मण जी का कि इनका राज अभिषेक विभीषण का क्या किया गया, राज अभिषेक किया गया। फिर भगवान ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी आप जाकर के सीता जी को इस संदेश दीजिए कि रावण मारा गया, तो लाने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ संदेश देने के लिए। हनुमान जी फिर गए सीता जी के पास, अशोक वाटिका में वो थी, उन्होंने चरण प्रणाम किया और कहा कि सब खुशखबरी सुनाई, सीता जी परम प्रसन्न हुई, फिर वापस आए भगवान राम के पास। अब भगवान राम से कहा कि सीता जी अब परम प्रसन्न है, अब उनका स्वागत के ढंग से बुलाया जाए। तब विभीषण राजा बन चुके थे। विभीषण ने कहा कि मैं पालकी से लेकर के फिर सीता जी को स्नान कराया गया, तो त्रिजटा जो भक्तिन थी और शर्मा विभीषण की पत्नी, ये सब श्रृंगार करके अब पूरा बढ़िया वस्त्र साड़ी पहना करके आभूषण से लेकर के अब पालकी से लाने लगे। तो जब नज़दीक पहुँचे तो सारे बेचारे बानर कितना मार खाए थे से सीता जी को देखा नहीं था कि जिसके लिए इतना युद्ध किया उसको एक झलक देखना चाहिए था। तो भगवान राम ने कहा कि पालकी से न ला करके पैदल लेके आओ ताकि हमारे सब बानर दर्शन कर सकें, देख सकें। इस तरह से सीता जी जब निकले वो देखते ही रहेगा सब, बहुत ही खूबसूरत सीता जी है ना है। फिर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुरंत क्या करो, लकड़ी जलाकर अग्नि तैयार करो। ये बात सबको पच नहीं रही थी कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, कि मैं चाहता हूं, मैं सीता जी का टेस्ट लेना चाहता हूं है ना, क्योंकि इतने दिन तक रावण के दरबार में पवित्र हैं कि नहीं पवित्र हैं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अग्नि में प्रवेश करके अब फिर निकल करके आए है ना, तभी मैं स्वीकार करूंगा है ना। अब ये बात किसी को पता नहीं था, लक्ष्मण तक को पता नहीं था, सबको ये पता था कि असली सीता है, वास्तव में ये छाया सीता थी। अगर बाणों के पता चलता कि नकली सीता बेचारे क्यों मार खाते क्यों लड़ाई करते, कम इतना मार खाए दिल भर इतना बड़ा पुल बनाया फर्जी सीता के लिए किसी के पता ही नहीं था। लक्ष्मण तो रस नहीं मानता, भगवान ने बताया, भगवान लीला भगवान ही जानते हैं है ना। अब फिर भगवान ने क्या किया, जब अग्नि की चलते सब बेचारे कोई बोल भी नहीं सकता था, राम का आदेश आदेश। अब सीता जी जो है अग्नि को प्रणाम करके, चूंकि छाया सीता थी है ना, वो अग्नि में प्रवेश कर गई, तो जो असली सीता थी अग्नि देवता लेकर कर भगवान को सौंप दिया, ऐसा हुआ। क्योंकि सीता हरण के पहले जब मारीच से रावण चुरा बात कर रहे थे, तो भगवान राम भी सीता जी से अकेले बात कर रहे थे। उधर रावण प्लान बना रहे थे, भगवान राम प्लान बना रहे थे कि हे राम, ले सीता, आपको पता है कि हम इस पृथ्वी पर राज को मारने के लिए आए हूँ, अब मैं लीला करना चाहता हूँ, अब आप जब तक हम पूरे राक्षसों को बीन पृथ्वी नहीं करते आप अग्नि के साथ रहिए है ना, अपनी छाया सीता हमको देख करके जाइए है ना। तो अब जब बारी आई तो अग्नि में जो है देवता जो है जो नकली सीता थी छाया सीता वो अग्नि में प्रवेश कर गई, तो इधर से नकली सीता जाती हैं, उधर से असली सीता क्या होती हैं प्रकट होती हैं, आकर प्रभु कृष्ण हो जाते, ए रस प्रभु जी को था खल। सब लोग ताली बजाने लगे, आप लोग ताली बजा दीजिए, और जितने भी देवता थे स्वर्ग सब पुष्प वर्षा करने लगे, सब प्रसन्न होने लगे। तब भगवान ने कहा कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें प्रस्थान करना चले अयोध्या के लिए, और उसके लिए पुष्प विमान तैयार होने लगा। अब कल जो है भगवान अयोध्या के लिए क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण, कोई जाएगा नहीं, रुकेंगे।
बताइए,
अनाउंस करिए फटाफट।
तो आज आप सभी को आज
कल
रावण ने रावण का वध हुआ राम जी के द्वारा, उस सबकी खुशी के लिए आपको बधाई। कल राजा भी होगा और पता को विराम दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सात दिन की कथा कोविंद ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, उसका धन्यवाद करते हुए हम कुछ भी उनको भेज देना चाहें, कथा के बाद हम ऊपर आगे उनसे आशीर्वाद दे सकते हैं, एक दर्शन के प्रसाद दे सकते हैं। कल कथा का है,
विश्राम दिवस, विश्राम।
होगा टेम्पल हॉल में, और उसके बाद प्रसाद शाम को बहुत ही सुंदर रामलीला वैकुंठा प्लेस वालों में प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि ये सभी जो लीलाएं हैं और सभी जो समय का आनंद लीजिए, श्री राम जी का आशीर्वाद दीजिए। अभी आपकी होगी, उसके बाद आप
सब खड़े हो जाए। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम।
श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम।
संदर्प अंगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम।
संदर्प अंगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर।
पट पीत मान तरित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम।
पट पीत मान तरित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम।
भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशन कंदनम।
भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशन कंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम।
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
आजान भुज शरचाप धर संग्राम कृत कर भूषणम।
आजान भुज शर साप धर संग्राम जित कर दूषण।
इति वदति तुलसी दास संकर शेष मुनि मनरंजनम।
इति वदति तुलसी दास संकर शेष मुनि मनरंजनम।
मम हृदय कंज निवास करु कामादि फल दल गंजनम।
मम हृदय कंज निवास करु कामादि फल दल गंजनम।
मन जाहि राचु मिलहि शोभ सहज सुंदर सावरो।
मनु जाहि राचु मिलहि शोभ सहज सुंदर सावरो।
गौणान धान सुजान शील स्नेह जानत रावरो।
गौणान धान सुजान शील स्नेह जानत रावरो।
पाति दौरी अशीष
सुनिशिया सहिता हिया हरा शीतली
तुलसी भवानी तुझी पुनितम मुदित मन मंदिर चली
तुलसी भवानी तुझी पुनी पुनी
मुदित
मन मंदिर चली
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय सीता
सीता